दिन भर 19 मार्च रविवार सभी सुनने वालों को निखिल रंजन का नमस्कार। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर आदित्यनाथ योगी की ताजपोशी।
मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति।
उग्र हिंदुत्व की छवि वाले आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने पर क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश के मुसलमान।
कोई डरे हुए नहीं है हम लोग, और खुशी की बात है कि निजाम बदला है, हो सकता है ये सरकार हम लोग के लिए अल्पसंख्यकों के लिए कुछ अच्छा करे।
हिंदू मुसलमान का यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, सब भाई भाई हैं।
मुझे बहुत खुशी है।
यूपी के नए मंत्रिमंडल से क्या तस्वीर उभरती है, करेंगे विश्लेषण, साथ ही खास मुलाकात योगी आदित्यनाथ से भी। खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदित्यनाथ योगी ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। योगी मंत्रिमंडल के 22 कैबिनेट मंत्रियों और 24 राज्य मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। मंत्रिमंडल में 6 महिलाओं को जगह दी गई है। इकलौता मुस्लिम चेहरा क्रिकेट मैदान से राजनीति में आए मोहसिन रजा हैं, उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। लखनऊ में आयोजित शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। शपथ समारोह के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई।
लोक कल्याण के प्रति समर्पित यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करेगी। इसके लिए शासन प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह बनाया जाएगा। भोजन, आवास, सड़क, पेयजल, शौचालय जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए सरकार निरंतर पूरी सजग तरीके से कार्य करेगी।
ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे जाट समुदाय ने कल प्रस्तावित दिल्ली मार्च को स्थगित कर दिया है। इसका ऐलान जाट नेताओं की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से हुई बातचीत के बाद किया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक खट्टर ने कहा कि केंद्र और हरियाणा की सरकारें जाटों को आरक्षण देने के लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू करेंगी। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रमुख यशपाल मलिक ने बताया कि अब वो सोमवार को संसद का घेराव नहीं करेंगे। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने एक इस्लामी चरमपंथी और 2 अन्य लोगों को दी गई मौत की सजा के खिलाफ अंतिम अपील को खारिज कर दिया है। ये सजा साल 2004 में ब्रिटेन के उच्चायुक्त पर ग्रेनेड हमला करने के मामले में सुनाई गई है। हरकत उल जिहाद समूह के प्रमुख मुफ्ती अब्दुल हन्नान और 2 अन्य लोगों को 9 साल पहले सजा सुनाई गई थी। इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई थी जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए थे। अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन पूर्वी एशिया के दौरे के आखिरी दिन जिस वक्त चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे थे, उसी दौरान उत्तर कोरिया के रॉकेट कार्यक्रम की कामयाबी की खबर आई। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने हाई थ्रस्ट इंजन के कामयाब परीक्षण को क्रांतिकारी बताया। स्वतंत्र स्रोत से परीक्षण की कामयाबी की पुष्टि नहीं हो सकी है। उधर जिनपिंग से मुलाकात के बाद टिलरसन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर आशान्वित हैं। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप और आपके साथ हुई चर्चा को काफ़ी अहमियत अमेरिका में दी जाती है, खासतौर पर टेलीफोन पर हुई लंबी बातचीत को, जिसमें चीन और अमेरिका के रिश्तों को बेहतर करने को लेकर राष्ट्रपति से आपकी अच्छी चर्चा हुई थी। वो भविष्य में भी इस समझ को आगे बढ़ाने और यात्रा के अवसर की ओर देख रहे हैं। ये थे अमरीकी विदेश मंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चीन के अधिकारियों का कहना है कि राजधानी बीजिंग में कोयले से चलने वाले आखिरी पावर स्टेशन ने काम करना बंद कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक अब बीजिंग में सिर्फ प्राकृतिक गैस के जरिए बिजली बनाई जा रही है। चीन के प्रधानमंत्री ली कचियांग ने संसद में प्रदूषण रोकने के नए प्रयास करने का वादा किया था। आखिरी प्लांट बंद होने से इस साल में 1 करोड़ टन कोयले के उत्सर्जन पर रोक लगेगी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। आज आपके साथ निखिल रंजन।
मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्य रखूंगा।
भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ काबिज हो गए हैं। लखनऊ के कांशीराम स्मृति उद्यान में एक भव्य समारोह में उन्हें राज्यपाल राम नाईक ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री के तुरंत बाद मंत्रिपरिषद के बाकी सदस्यों ने भी शपथ लिया।
अक्षुण्य रखूंगा मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में।
इनमें सबसे पहला नाम था यूपी बीजेपी के प्रमुख केशव प्रसाद मौर्य और लखनऊ के मेयर दिनेश शर्मा को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। दिनेश
शर्मा, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे।
इसके बाद बारी बारी से कुल 48 मंत्रियों ने शपथ लिया। इसमें क्षमा कीजिएगा, 46 मंत्रियों ने शपथ लिया। इनमें 22 कैबिनेट और 24 राज्य मंत्री हैं। 9 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है।
के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
शपथ ग्रहण के लिए बीजेपी के शीर्ष नेता लखनऊ पहुंचे थे। इनमें पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, वेंकैया नायडू के अलावा रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस, चंद्रबाबू नायडू, मनोहर परिकर समेत कई दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव भी कार्यक्रम में शामिल हुए। आदित्यनाथ योगी के शपथ ग्रहण समारोह में बीएसपी नेता मायावती नहीं आई थी। बाद में उन्होंने मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने बीजेपी पर उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है।
जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि उत्तर प्रदेश में इस बार विधानसभा के हुए आम चुनाव में बीजेपी द्वारा वोटिंग मशीन में की गई गड़बड़ी के जरिए आज बीजेपी की सरकार का गठन भी हो गया है। ये कोई ईमानदारी की सरकार नहीं है। इसके साथ ही बीजेपी ने इस बार मुख्यमंत्री भी यहाँ प्रदेश में अपने आरएसएस के एजेंडे को पूरा करने के खास उद्देश्य से ही क्षत्रिय समाज से छांटकर श्री योगी आदित्यनाथ को बनाया है। और इसके लिए बीजेपी ने यहाँ प्रदेश के ब्राह्मण समाज की भी उपेक्षा की है। ये सब किसी से छिपा नहीं है।
ये थी मायावती। लखनऊ तहजीब का शहर है और नवाबों की नगरी के रूप में मशहूर है। ये वो जगह है जहां मुस्लिम लोगों की एक बड़ी जमात रहती है। एक तरफ जब योगी आदित्यनाथ के समर्थक नारेबाजी कर रहे थे और उनका मंत्रिमंडल शपथ ले रहा था, तब लखनऊ के मुसलमान क्या सोच रहे थे, ये जानने पहुंचे बीबीसी संवाददाता सलमान रावी पुराने लखनऊ के एक इलाके में।
मैं इस वक्त लखनऊ में हूँ। पुराने लखनऊ का मौलवीगंज का ये इलाका है और जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं उत्तर प्रदेश के, मेरे साथ बहुत सारे यहाँ नौजवान हैं, मुसलमान वरिष्ठ लोग वो मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि एक कहा जा रहा है कि मुसलमानों में खौफ का माहौल है, डरे हुए हैं।
नहीं, बिल्कुल डरे हुए नहीं है हम लोग, कोई भी डर नहीं है हम लोग के। और खुशी की बात है कि निज़ाम बदला है, हो सकता है ये सरकार हम लोग के लिए कुछ अच्छा करे।
पहले तो मैं उनका इस्तकबाल करूँगा सीएम बनने पर, और दूसरी बात ये जो हवा यहाँ फैली हुई है ये ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, हम लोग बहुत खुश हैं।
मुसलमान आबादी कितनी है इस इलाके की?
यहाँ की आबादी लमसम 1.25 लाख के आसपास आबादी है यहाँ मुस्लिम।
तो यहाँ पर कौन कैंडिडेट जीते हैं?
यहाँ जो कैंडिडेट जीते हैं बीजेपी के ब्रजेश त्रिपाठी जी हैं, वो जीते पाठक के।
तो ये लखनऊ सेंट्रल सीट है असेंबली की,
मध्य विधानसभा क्षेत्र।
तो ये मुस्लिम बहुल इलाका है?
जी, मुस्लिम बहुल इलाका है।
तो वोट उनको क्या, इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमानों ने भी वोट दिया है?
बिल्कुल दिया है,
बिल्कुल दिया,
बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया है।
मगर अब बीजेपी आई है, अब देखिए भाई यहाँ
क्या रंगत,
अब आगे क्या
होता है। आप, आपका नाम क्या है?
मुझे सुरेंद्र कुमार कहते हैं।
आप तो हिंदू समुदाय से हैं, क्या ये सही है कि मुसलमान डरे हुए हैं इस इलाके?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
योगी आदित्यनाथ जी के बनने के
बाद ऐसा कुछ नहीं, सब भाई भाई है।
बिल्कुल वोट मिला है, बीजेपी को वोट मिला है,
बिल्कुल वोट दिया गया उनको।
योगी आदित्यनाथ जी को कैसे देखते हैं आप, किस तरह के पॉलिटिशियन के रूप में
देखते हैं? अच्छी तरह देखते हैं, ऐसी बात नहीं।
उनका राजनीतिक कैरियर तो वो अपने हिसाब से देखिए हिंदुत्व को लेकर चलते हैं, लेकिन अंदर पॉलिटिशियन को सीट के हिसाब से वो लेकर चलते हैं। अंदर वो कैसे जो है बन गए हैं वो कैसा है उनका एटीट्यूड रहेगा ये तो उनके बैठने पे पता चलेगा।
मैं उनको जाना जाता था कि हार्ड कोर हिंदुत्व का जो है वो एजेंडा लेकर चलते हैं, क्या आपको लगता है कि वो एजेंडा वाकई में उनका है या फिर
जो है सीट के लिए होता है? हर सारी पार्टियाँ अपने अपने फेवर के लिए जो है बोलती हैं, अब जो आ गए अब जो करेंगे अब उसी पे जो है बेस होगा कि जो बोलते हैं वो कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि गोरखपुर में भी हैं वो गोरखपुर के लोगों भी कहते हैं कि वो जो कहते हैं वो मतलब हैं आदमी सही।
देखिए पहली बात उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने पर वो सब आवाम को एक साथ समझेंगे और अच्छे काम करेंगे।
मैं ये कह रहा था कि जैसे मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो बस यही हम लोग चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास।
लेकिन ये जो इतनी बड़ी जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इसके लिए आपको क्या लगता है क्या फैक्टर्स रोल प्ले किए होंगे इसमें?
हो सकता है पब्लिक को पसंद हो मोदी जी, इसलिए अच्छे काम करें, आगे की जनरेशन के लिए फायदा पहुंचेगा हम लोगों को। इससे पहले भी बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ रह चुकी है, उसमें भी मुस्लिम लोगों के लिए बहुत से काफ़ी अच्छे काम हुए, जैसे कि अटल बिहारी जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया हाजियों के लिए, ये मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा काम करा। और मोदी जी से भी यही उम्मीद है कि ये मुस्लिम के लिए थोड़ी सी तवज्जो करेंगे और अच्छे काम करेंगे।
उन्होंने कहा कि परिवर्तन लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे, भाई एजेंडा क्या है? डजंट मैटर, हिंदू मुस्लिम आदमी नहीं चाहता कि यार ये हिंदू मुस्लिम ख़त्म करो। वो सीधी सी बात है कि परिवर्तन के नाम पे इन्होंने जो एक एजेंडा निकाला है तो इस एजेंडे को ये लेके चलें कि ये हिंदू मुस्लिम को साथ में लेके ना चले।
ये थे लखनऊ के मुस्लिम मतदाता जिनसे बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता सलमान रावी। मुख्यमंत्री पद पर आदित्यनाथ योगी की ताजपोशी के बाद पूर्वांचल में खासतौर से खूब खुशी की लहर है और उनके समर्थक बड़े जोश में हैं। गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर वो जगह है जहां के वो मठाधीश हैं और यही वो केंद्र है जिनकी धुरी से वो बंधे हुए हैं। हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र ने वहां जाकर लोगों से बात की।
मैं इस वक्त गोरखपुर में गोरखनाथ धाम मंदिर में हूं, जो कि उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहीं पे घर भी है, यहीं पे उनके जो उनका जो मठ है उसका ये मुख्यालय भी है और ये बहुत बड़ा मंदिर है, काफी मशहूर मंदिर है। यहां योगी जी के बहुत से समर्थक तमाम लोग हैं जो कि अभी तक नारेबाजी कर रहे थे। जी बताए कि योगी जी मुख्यमंत्री बन गए हैं, इसकी उम्मीद थी आप लोगों को पहले से?
जी।
क्या नाम है आपका?
राधेश्याम पांडे। हमारे योगी जी यूपी और पूर्वांचल के लिए ऐसा कदम उठा दिए थे, वो मुख्यमंत्री के समान ही थे।
ऐसा कदम उठा दिए थे, ऐसा क्या कदम उठा दिए थे आप लोग बताएं जरा।
मेरा नाम आनंद कुमार है। वो एम्स और फर्टिलाइजर के लिए जो कई सालों से बंद पड़ा हुआ था उसको पूरा निर्माण करवा के गोरखपुर के साथ साथ यूपी के अन्य जनता के लिए भी वो युवा सारी सुविधा उपलब्ध करा दिए हैं। और जो सपा की गुंडे चरम सीमा पे थी हर जगह, उसके बाद से वो खत्म हो जाएगी।
जी जी, महिलाएं ज्यादा प्रशांति गुंडागर्दी बढ़ गया तो सपा के सरकार में इनका जो शासन बनेगा तो महिलाओं का भी सुरक्षा मिलेगी।
आप लोग कह रहे हैं कि बनेगा और योगी जी वो भी उग्र व्यक्ति है, उनकी भी पहचान इस तरह की है, तो कैसे वो नियंत्रण रखेंगे लोगों?
सबको साथ लेकर के वो चलने वाले हैं। और पूर्वांचल नहीं, आज मुख्यमंत्री पद का शपथ लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश का ये कायाकल्प कर देंगे, गुंडा राज खत्म हो जाएगा,
साथ सबका भी।
हम लोग एकदम निश्चिंत है, जान लीजिए। हम लोग जानते थे कि हमारे योगी बाबा जो है मुख्यमंत्री बनेंगे,
अगला भविष्य में पीएम बनने लायक है, ये पीएम।
देखिए उन्होंने कई मुद्दों पे काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में उनकी गोरखपीठ की जबरदस्त काम है, विकास उन्होंने कराया, तो लोगों को ये लगा कि एक आदमी ऐसा है कि जो धर्म के साथ विकास की भी बात करता है और विकास को उन्होंने चरितार्थ करके दिखाया।
जो ये खास तौर पे योगी जी की उग्र छवि है, उग्र हिंदुत्ववादी छवि है, उसको लेकर के और जो जोश लोगों में दिख रहा है, कहा जा रहा है कि ये योगी जी की उग्र हिंदुत्ववादी छवि है, उसी का जोश लोगों में है, तो योगी जी खुद इसको किस तरह से टैकल करेंगे अब जबकि मुख्यमंत्री बन गए?
देखिए एक चीज समझना होगा कि अभी तक का पिछला 15 साल का देखेंगे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश ही विकास के धारा में था, पूर्वांचल हर मुद्दे पे पिछड़ा हुआ था। और जाहिर सी बात है इसीलिए योगी जी का हिंदुत्व जो है यहाँ पे खूब फला फूला। लेकिन अब जब पूर्वांचल की तरफ से योगी प्रतिनिधित्व के लिए आगे बढ़े तो लोगों को लगा कि विकास के रूप में जो अछूता हम लोग का इलाका है, कहीं हम दूर रहें, सफाई में ही सब कुछ बनेगा, तो लोगों को एक उम्मीद आई कि हाँ हमारा गोरखपुर भी, हमारा पूर्वांचल भी, हमारा बनारस भी, ये भी विकास के दौर
लोगों को ये उम्मीद है कि पूर्वांचल का भी अब विकास होगा। लेकिन जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि पिछले काफी साल से योगी जी सांसद है यहाँ के, और गोरखपुर को आप देख लीजिए, विकास जैसी चीज दिखती नहीं है, सड़कें टूटी फूटी है, कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं? हाँ युवा है, कैसे उम्मीद करते हैं कि ये विकास होगा?
इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे उपद्रव हैं, आप समझ रहे होंगे, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, इसकी वजह से वो नहीं रह जाता, वो जो निधि आती थी वो वापस चली जाती थी, जिस वजह से ये विकास के देर में नहीं आ सकता था, जिसकी वजह से आप ये भी सोचते हैं कि स्मार्ट सिटी में हमारी गोरखपुर नहीं आई है, इसलिए उम्मीद किया जाता है कि ये हमारी
आप कुछ कह रहे थे
जी मुख्यमंत्री बन गए, अब तक जो नहीं किए वो अब करेंगे, इसलिए वो सीएम बने हुए हैं।
एक चीज और बताइए, इसको लेकर के कहा जा रहा है कि एक बड़ा समुदाय है जो कि बहुत डरा हुआ है, खासतौर से मुस्लिम समुदाय है, तो इसमें इस तरह का है गोरखपुर में?
ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, सब टोटली एक है, और योगी जी अपने सबको लेके चलते हैं साथ में, ऐसा कोई बात नहीं है कि हिंदू के लिए करते हैं, वो सबके लिए देखते हैं।
तो ये सारे योगी आदित्यनाथ के समर्थक हैं और ये सभी लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार एक चुना है वो बहुत ही सही चुना है। समीर आत्मज मिश्र, BBC गोरखपुर।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5885, 7600, 9740, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
BBC रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिनभर निखिल रंजन के साथ। जैसा कि आपने सुना कि योगी आदित्यनाथ की जो आज ताजपोशी हुई है उसको लेकर के लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया है, आप जरा एक बार उनके मंत्रिमंडल पर नजर डाल लेते हैं। मंत्रिमंडल में शामिल प्रमुख चेहरों में सुरेश खन्ना, सतीश महाना, स्वतंत्र सिंह देव, धर्मपाल, लक्ष्मी नारायण चौधरी, सिद्धार्थनाथ सिंह, सूर्यप्रताप शाही, श्रीकांत शर्मा, रीता बहुगुणा जोशी, स्वामी प्रसाद मौर्य, SP बघेल, चेतन चौहान, सुरेश पासी, संदीप सिंह जैसे नाम शामिल हैं। मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक समुदाय से मोहसिन रजा हैं, जबकि गुलाबो देवी और स्वाति सिंह समेत 6 महिलाओं को भी इसमें जगह मिली है। लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी से मैंने पूछा कि मंत्रिमंडल को देखकर क्या तस्वीर उभरती है उनके मन में।
पहली बात तो यह है कि पूर्वांचल उत्तर प्रदेश को काफी प्राथमिकता मिली है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी स्वयं गोरखपुर से हैं, उसके अलावा रीता जोशी हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, नंदी जी हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह हैं, बहुत सारे जो मंत्री हैं, रमापति शास्त्री हैं, ये सब पूर्वांचल के हैं। और इसमें जो पुराने कई अनुभवी मंत्री हैं जो पहले रहे हैं कैबिनेट में, जैसे लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं या शाही जी हैं या राजेश अग्रवाल हैं, लेकिन बहुत सारे नए चेहरों को भी उन्होंने इसमें शामिल किया है, जैसे सिद्धार्थनाथ सिंह हैं या श्रीकांत शर्मा है मथुरा के। दूसरी बात ये भी देखने में आई है कि जो दूसरे दलों से आए हैं तमाम लोग उनको भी मंत्री बनाया गया है, जैसे लखनऊ में ही रीता जोशी हैं, ब्रजेश पाठक हैं, इलाहाबाद से नंदी हैं, तो इस तरह से कोशिश की है BJP ने कि नए और पुराने दोनों तरह के चेहरे हों। और एक जो सबसे बड़ी कमी कही जा रही थी कि इसमें उत्तर प्रदेश में करीब 19-20% मुस्लिम आबादी है अल्पसंख्यकों की, कोई विधायक का उन्होंने टिकट नहीं दिया था, लेकिन मोहसिन रजा जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और यूपी के BJP के प्रवक्ता भी थे उनको भी जगह दी गई है, तो BJP ने ये कमी पूरी करने की भी कोशिश की है।
कहा जा रहा है कि ये हिंदुत्व का चेहरा है आदित्यनाथ और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो जो विकास वाली राजनीति थी, जो विकास की बातें की जाती थी, क्या उसको जगह मिल पाई है इस मंत्रिमंडल में?
योगी आदित्यनाथ की जो पहचान रही है वो खुद भी गोरखपीठ है, गोरखपुर के उसके पीठाधीश्वर हैं, और राम मंदिर आंदोलन में वो काफी सक्रिय रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद में सक्रिय रहे हैं, और खुल करके या एक कट्टर हिंदुत्व की जो बात खुल करके मुसलमानों के खिलाफ भी वो बोलते रहे हैं, तो इसलिए ये तो कहा ही जाएगा कि ये हिंदुत्व का चेहरा है। अब जहाँ तक विकास की बात है तो वो इस बात पे निर्भर करेगा कि वो करते क्या हैं। जो अभी उन्होंने पहला संकेत दिया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि युवाओं को रोजगार जो है और खास करके स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे। उत्तर प्रदेश में जो विकास की सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि यहाँ रोजगार के अवसर नहीं है, युवकों को बड़े पैमाने पर बाहर जाना पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि खेती जो है घाटे का सौदा हो गई, क्योंकि जो किसान पैदावार होती है उसको खरीदने का इंतजाम नहीं है। पूर्वांचल में ही जहां से मुख्यमंत्री योगी जी आते हैं तमाम चीनी मिलें बंद हैं, उसके अलावा एक बहुत बड़ा यहां का रोजगार का साधन रहा है कपड़ा उद्योग, उसकी भी हालत खराब है, कताई मिलें बंद है, किसानों के कर्जा माफी की बात की थी वो क्या करते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी होता है विकास के लिए कि शांति व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में इसलिए बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर से नहीं आना चाहते उद्योग लगाने, क्योंकि उनको सुरक्षा का खतरा रहता है। तो अब ये निर्भर करेगा कि वो कदम क्या उठाते हैं।
ये थे लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी, जो विश्लेषण कर रहे थे योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का। योगी आदित्यनाथ बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में चुनाव के पहले से ही शामिल थे। हालांकि जो बात उनके हक में जाती है, वही बात उनके विरुद्ध भी। हिंदुत्व की जिस छवि के साथ वो बड़े नेता बनकर उभरे, उसी छवि की वजह से बहुत से लोगों ने उन्हें खारिज भी किया। चुनाव प्रचार में वो काफ़ी व्यस्त रहे और हर रोज उनका हेलीकॉप्टर पूर्वांचल के इलाकों का दौरा कर रैलियाँ करता रहा। इसी बीच जो व्यस्त समय था, उसके बीच में हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र ने उनसे बात करने का एक मौका निकाल ही लिया। तो संडे दिनभर में आइए, आपको यही चुनाव प्रचार के दौरान जो बातचीत हुई थी वो सुनवाते हैं।
पिछले 15 वर्षों में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और फिर समाजवादी पार्टी, इन दोनों दलों ने उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित किया है, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा पे सेंध लगाई है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए पेशेवर अपराधी और माफियाओं को संरक्षण देकर के प्रदेश में अराजकता फैलाई है। आज प्रदेश में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं और माताओं बहनों की सुरक्षा तो भगवान भरोसे है। उत्तर प्रदेश विकास के पायदान पर सबसे पीछे गया है। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना लोक संकल्प पत्र जारी किया है, यानी मैनिफेस्टो, जो चुनावी मैनिफेस्टो घोषित जारी किया है, उसमें गाँव, गरीब, किसान, नौजवान के साथ साथ देश के पशुधन के संरक्षण, प्रदेश के पशुधन के संरक्षण के लिए यांत्रिक कत्ल खानों को पूरी तरह रोकने, सांप्रदायिक रूप से हिंसा से के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में सामूहिक पलायन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने और व्यापक आस्था के प्रतीक राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से संबंधित विवाद का संविधान के दायरे में रहकर के समाधान का मार्ग निकालने की बात कही है। एक बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि वह उत्तर प्रदेश की वर्तमान दुर्दशा से और उत्तर प्रदेश को देश के समृद्ध राज्यों और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दे सकता है।
सर, ये जो संवैधानिक दायरे में रह करके राम मंदिर निर्माण की बात है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस तरह का कोई बिल पार्लियामेंट में ले आया जाए, कुछ किया जाए? अभी तक पूर्ण बहुमत में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने कोई इनिशिएटिव इस तरह का लिया नहीं है। केवल उत्तर प्रदेश में सरकार अगर भाजपा की बन जाती है तभी ये हो सकता है, ये कैसे विश्वास आप दिलाएंगे?
देखिए, बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए भी आवश्यक है कि वह जन विश्वास की अपेक्षाओं पर खरा उतरे, क्योंकि आज किसी को यहाँ विश्वास ही नहीं सुरक्षा की। कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति है और कानून व्यवस्था राज्य सरकार देखती है। राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े हुए विवाद का पटाक्षेप हो, स्वाभाविक रूप से न्यायालय भी राज्य सरकार से पूछेगी कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को आप रोक पाएंगे? अगर कोई ऐसी सरकार जो तुष्टिकरण की पोषक है तो वह कभी भी इस विवाद का समाधान नहीं चाहेगी। स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार की बड़ी भूमिका होने जा रही है और उस भूमिका के लिए भारतीय जनता पार्टी का आना आवश्यक है।
एक चीज़ और इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल पूछेंगे, वो पूछा जाता है चूँकि अक्सर पूछा जाता है, बीजेपी के नेता, बीजेपी के लोग ही इस मामले में क्या बटे हुए रहते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि हमारा चुनावी मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, चुनाव राजनीति का मुद्दा नहीं है, सांस्कृतिक मुद्दा है, इसको क्या कौन सा मुद्दा लिया जाए? लेकिन हर चुनाव से पहले ये मुद्दा निकल करके आता है।
देखिए, ऐसा नहीं है, हम इस मुद्दे पर वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अपना विजन पब्लिक के सामने रख रहे हैं। राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं, व्यापक आस्था के प्रतीक हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर उनका भव्य मंदिर का निर्माण संविधान के दायरे में अगर रह करके हो सकता है तो मुझे लगता है इसका स्वागत होना चाहिए।
नहीं, स्वागत होना चाहिए, लेकिन इस इशू पे बीजेपी सरकार बना चुकी है, उसके बाद उसके ऊपर ये बड़ा आरोप लगा कि सरकार बनने के बाद भाजपा खुद इस मुद्दे को भूल गई, राम मंदिर के लिए उसने कुछ नहीं किया।
जी देखिए, हम लोग कभी इस मुद्दे को भूले नहीं हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना में ये मुद्दे मील के पत्थर हैं और हम लोग इन मुद्दों को कभी विस्मृत नहीं कर सकते हैं। पहल की गई है, व्यापक पहल हुई है, उस पहल के परिणाम सामने आए हैं। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने जो निर्णय दिया है, ये उसी पहल का एक प्रतिफल है कि 50 वर्षों से जो मामला लंबित था वह एक निर्णय तक पहुंचा।
एक सवाल ये पूछा जाता है कि बीजेपी केंद्र में जब से सरकार में आई है, बजाय सार्थक काम करने के। ये लोगों के आरोप हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कभी कैराना मुद्दा, कभी गोकशी का मुद्दा, कभी इस तरह का मुद्दा, इन चीज़ों को जानबूझ करके वो हवा देती है ताकि लोग केंद्र सरकार के कामकाज का मूल्यांकन ना कर पाएं, वो भूले रहें।
देखिए, केंद्र में से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने पिछले 2.5 वर्ष के दौरान जो कार्य किए हैं, मैं कहता हूँ कि कांग्रेस के 55 वर्ष के कार्यकाल पर 2.5 वर्ष भारी पड़ेगा। लोक कल्याणकारी योजनाएं हर 15 दिन में एक जारी हुई। आप आश्चर्य करेंगे कि इस देश के अंदर 25 करोड़ परिवार खातों से, बैंक खातों से वंचित थे। जनधन योजना में उन लोगों के बैंक खाते खुले। मुद्रा योजना बेरोजगार नौजवानों के लिए स्वरोजगार पैदा करने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका। लड़की पढ़ाओ लड़की बढ़ाओ वाले मामले में हरियाणा में लिंग अनुपात सुधरा है, इसमें नया परिवर्तन देखने को मिला है। अनेक योजनाएं उज्ज्वला योजना के माध्यम से गांवों में भी रसोई गैस लोगों को मिल जाए, यह कार्य भी अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हर गांव में बिजली पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस काम को किया है। देश के अंदर राजमार्गों का निर्माण हो, और मैं समझता हूँ किसानों के बारे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मामला हो, यानी जितनी योजनाएँ उन्होंने घोषित की। और पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास तो आज़ादी के बाद पहली बार पूर्वी उत्तर प्रदेश ने विकास को देखा है। गोरखपुर में फर्टिलाइजर, गोरखपुर में रामगढ़ ताल की योजना, गोरखपुर में चिलवा ताल की परियोजना, गोरखपुर को चारों ओर से 4 लेन मार्गों के साथ जोड़ने की योजना, गोरखपुर से प्रदेश की पहली हम सफर ट्रेन का चलना, गोरखपुर को दिल्ली से 2 वायु सेवा से, कलकत्ता से 1 वायु सेवा से, गोरखपुर में टर्मिनल का निर्माण, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 8 नई सुपर स्पेशलिटी का, गोरखपुर में नई नई रेल लाइनों के निर्माण का, गोरखपुर का जो मुख्य जंक्शन है वो विश्व स्तरीय सुविधाएं देने की बात, ये सारे कार्य प्रारंभ हुए हैं। तो ये बात पहली बार हुआ है कि इतनी योजनाएं आई हैं, लोग देख रहे हैं कि इतना कैसे।
उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर रहे थे समीर आत्मज मिश्र। और अब खेल समाचार। खेल समाचारों के साथ आदेश कुमार गुप्ता आ चुके हैं स्टूडियो में। आदेश जी, क्या है खेल समाचारों में आज?
जी देखिए, निखिल, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, आज चौथे दिन ये टेस्ट मैच जो ड्रॉ की तरफ बढ़ता नजर आ रहा था, अचानक इसने करवट बदली और अब नतीजा थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा। क्योंकि आज जब खेल समाप्त हुआ तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 23 रन था। डेविड वार्नर 14 रन बनाकर जडेजा की गेंद पर बोल्ड हुए। नाथलियन भी 2 रन बनाकर जडेजा की गेंद पर बोल्ड हुए। मैट रेनशॉ 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। पहली पारी के आधार पर भारत को 152 रनों की बढ़त मिली, और यानी अभी भी ऑस्ट्रेलिया भारत से 129 रन पीछे है और उसके 8 विकेट बाकी हैं। दरअसल इतनी मजबूत स्थिति में भारत तब पहुंचा जब भारत ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 603 रन के स्कोर पर समाप्त की और अपने चित को साधकर बहुत ही शानदार अंदाज में बल्लेबाजी की चेतेश्वर पुजारा ने, जिन्होंने सबसे ज़्यादा गेंदें खेलने का रिकॉर्ड बनाया भारत के लिए। 525 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने 21 चौकों की मदद से 202 रन बनाए। इससे पहले राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड था सर्वाधिक गेंद खेलने का। और अगर रिद्धिमान साह की बात की जाए तो उन्होंने भी अपने बल्ले को साधा और 117 रनों की शतकीय पारी खेली। इन दोनों के बीच 7वें विकेट के लिए 199 रनों की साझेदारी हुई और अंगद की तरह ये दोनों पांव जमाकर खेलते रहे, जिसकी वजह से पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम बैकफुट पर नजर आई। अब देखना है कि क्या स्टीव स्मिथ यही काम अपनी टीम के लिए कर पाते हैं। और रांची का विकेट, जिसे देखकर शेन वॉर्न ने कहा था कि ये भयानक है, यहाँ पर 3 दिन में फैसला हो सकता है लेकिन 5वें दिन में तो ज़रूर होगा, और वो जो पिच के भयानक होने की बात कही थी वो ज़रूर अब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को लग रही होगी।
बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त खेल समाचारों के लिए। और अब आइए विदा लेने से पहले सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदित्यनाथ योगी ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे जाट समुदाय ने कल प्रस्तावित दिल्ली मार्च को स्थगित कर दिया है। इसका ऐलान जाट नेताओं की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से हुई बातचीत के बाद किया गया। सीरिया की राजधानी दमिश्क के करीब सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के बीच जोरदार संघर्ष की खबर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक शहर के बीचों बीच रॉकेट से गोले दागे जा रहे हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने हाई थ्रस्ट इंजन के कामयाब परीक्षण को क्रांतिकारी बताया है। स्वतंत्र स्रोत से परीक्षण की कामयाबी की पुष्टि नहीं हो सकी है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया वात्सल्य राय ने और आज स्टूडियो संभाला है राजेश चौहान ने। आपसे कल सुबह नमस्कार भारत में फिर मुलाकात होगी। इस बीच खबरें देखनी हैं तो आइए bbchindi.com पर। निखिल रंजन को सभी साथियों संग दीजिए अनुमति। नमस्कार।